ओम शांति। अभी बहुत सारा रिसर्च सुनने के बाद अभी हम एक दूसरी तरह के टॉक में जा रहे हैं। इसका टाइटल है हेरेडिटरी कैंसर, वेज फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। आपको अभी दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये टॉक रखने के पीछे एक उद्देश्य है कि आप सब लोग एक अवेयर रहें कि आजकल मेडिकल फील्ड्स में जो जो भी एडवांसेस हुए हैं, तो मतलब ये हमारी इच्छा थी कि हमारा बीके परिवार भी पूरा अवेयर रहे इसके बारे में। तो ये मैं एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगी। महात्मा बुद्ध के बारे में ये स्टोरी है। महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ दिया उन्होंने तपस्या के लिए, तो घर तो छोड़ दिया लेकिन पता नहीं था कि तपस्या करनी कैसे है। तो वो गए जंगल की तरफ गए, तो वहां पे उनको 5 सन्यासी मिले। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सिखाओ, मुझे तो नहीं पता कि तपस्या कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको सिखाते हैं। तो उन्होंने उनको बहुत ही सारे उपवास, व्रत, कुछ हठ क्रियाएं, जो जो भी सिखाते गए वो महात्मा बुद्ध करते गए, है ना। तो धीरे 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 उनको थोड़ी सी सिद्धियां भी प्राप्त होने लगी और उनके फॉलोअर्स भी बन गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि महात्मा बुद्ध थोड़े दुर्बल हो गए शरीर से, ना बीमार रहने लगे। तो एक फेज उनकी लाइफ में ऐसा आया, तो जो उनके शिष्य बने थे तो वो धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे। तो उन्होंने सोचा, अभी वो बेड पर हैं और सोच रहे हैं कि क्या मैं घर छोड़कर इसीलिए आया था, मैं तो साधना करने के लिए आया था लेकिन मैं तो अपनी बीमारी को लेकर बैठ गया। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो शरीर है वो हमारा सबसे बड़ा साधन है, है ना। अगर साधन को ही ठीक से नहीं चलाया तो साधना नहीं हो सकती है, है ना। और बाबा भी क्या कहते हैं कि आत्मा हो लेकिन शरीर का भी ध्यान रखना है, तभी बाबा की सेवा भी कर सकेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष भी कर सकेंगे। तो इसी के साथ बाबा के कुछ महावाक्य हैं 1999 की मुरली से। तो बाबा ने कहा है कि वाह वाह कहो, है ना, हाय हाय नहीं। तो बाबा ने कहा वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह। शारीरिक व्याधि में भी है हाय हाय नहीं, वाह ये भी बोझ उतरता है। वाह वाह करते रहो तो शारीरिक व्याधि भी खुश हो जाएगी। जिसकी महिमा करते हो वो खुश हो जाता है ना, ऐसा दुनिया में होता है ना। तो व्याधि को भी वाह वाह करो, प्राप्ति के आगे हिसाब किताब तो कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने बोला था कि ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव का कोर्स कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ। किस समय? जब शारीरिक व्याधि आती है अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगी। मुश्किल तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में शब्द ही नहीं होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक महावाक्य क्यों लिए गए, क्योंकि अभी हम बहुत तकलीफों की बात करने वाले हैं तो उसको हम सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन वाह वाह करते हुए ही उसको सुनेंगे। तो हमारा पहला लेसन जो हम कोर्स में कराते हैं और बाबा ने हमको जो पहला पाठ पढ़ाया है वो है क्या है कि हम आत्मा हैं। इस शरीर में भ्रिकुटी में विराजमान मैं आत्मा हूं। तो हम चलते चलते होता क्या है कि हम आत्मा पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि शरीर का ध्यान इतना ज्यादा नहीं रखते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे करते 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 फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि शरीर हमारा साथ नहीं देता है, तो हमारी साधना में भी वो एक विघ्न पड़ता है। और 31 दिसंबर 1970 की एक अव्यक्त मुरली है, उसमें बाबा ने ब्राह्मण दिनचर्या के बारे में पूरा बताया है कि सुबह उठने से लेकर रात्रि तक हमें क्या दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए। उसमें बाबा ने कहा था सबसे पहला थॉट आपका क्या होना चाहिए, मैं आत्मा इस भ्रिकुटी के में विराजमान एक मणि हूं और ये मेरा मंदिर है, है ना, मैं एक चैतन्य मूर्ति हूं और ये मेरा मंदिर है। तो मंदिर को हमें बहुत अच्छे से चलाना चाहिए। तो इस मैसेज, यही जस्ट एक मैसेज है। ओके, अभी बात करते हैं कि व्हाट इज कैंसर, है ना। हमेशा क्वेश्चन, हम कैंसर के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं बट जस्ट एक बेसिक कि कैंसर एक्चुअली है क्या। तो कैंसर जैसे आपको सबको पता है कि सेल्स की बीमारी है ना, कोशिका जो हमारे पूरे शरीर में होती है। तो जैसे हमारे अंदर आंखों के सेल्स हैं, मसल के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, स्किन सेल्स, फिर और अगर डीप में जाएंगे तो पेट में पेट के सेल्स हैं, आंतों के सेल्स हैं, हार्ट के सेल्स हैं, मतलब पूरी बॉडी हमारी मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। अब क्या होता है कि जैसे एक मधुबन के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऐसे ही एक सेल के अंदर एक कमरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा डीएनए, है ना। डीएनए के बारे में बहुत सुना होगा आपने। तो डीएनए एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया है, पहले सेल है फिर क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम क्या है, एक्चुअली डीएनए का ही एक पैकेज्ड फॉर्म, क्योंकि हमारे एक सेल में इतना डीएनए होता है, डीएनए एक धागे की तरह है, और एक सेल में इतना डीएनए होता है कि आप उसको पृथ्वी के चारों तरफ भी लपेट सकते हैं ना, एक सेल में। और मिलियंस ऑफ सेल में कितना डीएनए होगा, कितना सारा। तो इतना सारा डीएनए इतने छोटे से सेल में कैसे आता है, उसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो वो पैकेजिंग जो होती है वो क्रोमोजोम की फॉर्म में होती है, एंड क्रोमोजोम एक्चुअली कुछ नहीं है, जस्ट एक डीएनए ही है। और हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं। अब जीन क्या चीज है, क्रोमोजोम के ऊपर, मतलब डीएनए के अगर हम छोटे छोटे सेगमेंट्स को लें तो उनको हम कह रहे हैं जीन, और हर जीन का एक एक फंक्शन होता है जो हमारी ग्रोथ में, हमारे शरीर में किस समय पे कौन से चेंजेस आएंगे, हमारी लाइफ में क्या क्या होगा शरीर के अंदर, वो सारा जीन्स निर्धारित करते हैं। ओके, सो जस्ट एक और आपको पिक्चर दिखाया है कि ये क्रोमोसोम है और इसका एक छोटा सा सेगमेंट जो है वो जीन है, और जीन एक प्रोटीन कोड करता है ना। अब क्या है कि नॉर्मल जीन और म्यूटेटेड जीन, तो नॉर्मल जीन हेल्दी प्रोटीन बनाएगा, और अगर चलते चलते क्या होता है, शरीर के अंदर बहुत सारे डीएनए के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको बोला जाता है म्यूटेशन या फिर वेरिएशन बोला जाता है। तो अगर ऐसा कोई म्यूटेशन हो गया जीन में जिसके कारण से उसके फंक्शन में गड़बड़ी हो गई, तो वो क्या करेगा, वो एक डैमेज्ड प्रोटीन बनाएगा। तो क्या होगा, वो प्रोटीन ठीक से काम नहीं करेगा, और इन प्रोटीन्स का ही रोल है कैंसर में। जब ये तो ओवरऑल हमें क्या मैसेज मिला कि कैंसर जो है वो एक जेनेटिक डिसीज है, मतलब कि जो सेल्स होते हैं बॉडी के, कुछ सेल्स जिनके अंदर कुछ एक जेनेटिक चेंज आ जाता है जिसके कारण से वो कैंसर सेल में परिवर्तन हो जाते हैं। ये स्लाइड में अभी के लिए स्किप कर रही हूं। जैसे ये स्लाइड में दिखाया कि ये नॉर्मल सेल डिविजन चल रहा था, जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी में सेल्स बनते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं, तो जैसे अब वो सेल डिवीजन चलता ही रहता है, एक से दो सेल बनेंगे, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, फिर वो चलता ही रहता है प्रोसेस। चलते चलते क्या होगा, एक किसी सेल के डीएनए में कुछ चेंज आ जाएगा, है ना, जिसके कारण से वो जो प्रोटीन था वो डैमेज हो जाएगा, एंड वो एक सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फिर वो एक कैंसर सेल, बाबा ने क्या कहा है, अंश का वंश बन जाता है। तो यहां पर भी कैंसर भी वही मैकेनिज्म फॉलो करता है कि एक सेल पूरे कैंसर को, पूरे ट्यूमर को एक ग्रोथ, पूरा उसकी गांठ बना देता है, और ये हम तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाते जब तक वो एक स्टेज में पहुंच जाए, है ना, मतलब एक बड़ा ट्यूमर ना बन जाए। तो ये स्लाइड में दिखाया कि जो क्रोमोसोम की हमने बात की, ये बेसिक आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसके लिए हम बता रहे हैं, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 23 मम्मी से आते हैं और 23 पापा से आते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आधा डीएनए मम्मी से आता है, आधा डीएनए पापा से आता है। तो हमारे कुछ सौ या पांच सौ साल पहले ऐसा था कि ये समझा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मेल से ही होता है, तो क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी तो ऐसा सोचा जाता था, लेकिन साइंस ने इसको धीरे धीरे प्रूव किया, तो ये चीज है। तो अब क्या होगा, क्योंकि आधा आधा जेनेटिक मटेरियल मम्मी और पापा से आता है, तो जीन्स भी दोनों से आ सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि पापा की तरफ से अगर फैमिली हिस्ट्री कुछ है तो ही नीचे जाएगा। ओके, तो कैंसर पे आते हैं। यहां तक क्लियर है कि कैंसर क्या चीज है, मतलब इसके अंदर अल्टीमेटली एक जेनेटिक चेंज आ रहा है। अब एक चीज होती है कि सपोज पेट का कैंसर हुआ, तो पेट के जो सेल्स थे उसमें से एक सेल ट्यूमर में कन्वर्ट हुआ और वहां पे एक ट्यूमर की गांठ बन गई, राइट। ये अगली जनरेशन में नहीं जाएगा क्योंकि वो सिर्फ पेट के सेल्स में हुआ था, अगली जनरेशन में जाने का पोटेंशियल वो नहीं रखता है। अगली जनरेशन में कौन सा डीएनए चेंज जाएगा जो हमारे जर्म सेल्स में होता है, मतलब जो अगली जनरेशन में जाने के लिए जो सेल्स बने होते हैं। तो ये वाले टाइप को हम हेरिडिटरी कैंसर में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम कैंसर ज्यादातर लोगों में इन्हीं कारणों से होता है कि बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ये मैकेनिज्म चलता है और कैंसर डेवलप होता है। अब अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं, जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में होता है, ल्यूकेमिया होते हैं ब्लड कैंसर, फिर लिम्फोमा भी होता है, उसको भी ब्लड कैंसर ही बोलते हैं, कोलोन, इंटेस्टाइन में हमारा जो बड़ी आंत है उसमें कैंसर होना बहुत कॉमन है, फिर ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट में कैंसर हो सकता है, फिर फैट सेल्स में कैंसर हो सकता है, बोन में, मसल में, मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि बॉडी के हर टाइप के सेल्स में कैंसर डिटेक्ट हो चुका है। लेकिन जो सबसे कॉमन कैंसर्स आते हैं वो हैं कि लंग कैंसर, गले का कैंसर, फिर ब्रेस्ट कैंसर विमेन में, और कोलोन कैंसर, है ना, आंत का कैंसर भी काफी कॉमन हो गया है। अच्छा, अभी हम कारणों पे बात करते हैं कि कैंसर होता क्यों है। तो कुछ पहले से पता है, नोन कॉजेज हैं कि क्या क्यों क्यों होता है कैंसर। टोबैको खाने से होता है, जो लोग बहुत टोबैको च्यू करते हैं उनको कैंसर का रिस्क बहुत हाई है, अल्कोहल लेने से, स्मोकिंग, रेडिएशन, वायरस, कोई वायरस, कुछ पर्टिकुलर वायरसेस हैं कि अगर उनका इन्फेक्शन हो जाए तो वो फ्यूचर में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस हम सबको पता है कि हम काफी रिलेट करते हैं स्ट्रेस को काफी सारी बीमारियों के साथ, और कैंसर के साथ भी इसको रिलेट किया गया है, वो हम आगे कंसिडर कर रहे हैं। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, कि अगर किसी की फैमिली में पहले से कोई फैमिली हिस्ट्री है तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अदर जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, कुछ और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो अभी तक रिसर्च नहीं पता लगा पाई है, तो वो उसको अदर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। अच्छा, ये तो हुए नोन कॉजेज जो साइंस को पता है। अननोन कॉजेज क्या हैं जो साइंस को नहीं पता और हम बच्चों को पता है, वो है कर्मों के हिसाब किताब, है ना। जब भी किसी को कोई बीमारी आती है तो हम क्या बोलते हैं कि अरे बहुत लंबा हिसाब किताब है ना, बहुत बड़ा हिसाब किताब है, या फिर कार्मिक अकाउंट है। अच्छा, और इसका सेटलमेंट कैसे होता है, मतलब चुकतू कैसे होता है, या तो ट्रीटमेंट की फॉर्म में कि अगर चुकतू जब होना होगा तो टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, है ना, तो वो जो हिसाब किताब था वो चुकतू हो गया, फिर पेन की फॉर्म में, है ना, भोग से, फिर या तो फिर कैंसर इतना सीवियर स्टेज पर डिटेक्ट हुआ कि उससे शरीर छोड़ दिया। अच्छा, अभी और एक चीज होती है कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, है ना, चुकतू सिर्फ नेगेटिव वाला तो नहीं होता ना, चुकतू तो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आया बीमारी लेकिन आपने उसको जल्दी डिटेक्ट कर लिया या फिर होने ही नहीं दिया, है ना, पहले से ही जान लिया कि मुझे होने का रिस्क ज्यादा है तो आपने पहले से ही उसको रोकथाम के लिए कुछ मेजर्स लिए, वो भी एक सेटलमेंट है कार्मिक। अच्छा, अभी हम स्ट्रेस की बात करते हैं कि स्ट्रेस और कैंसर का क्या एक रिलेशन है। तो स्टडीज में ऐसा बताया है कि स्ट्रेस को का अगर स्ट्रेस है तो कैंसर में कुछ चीजें परिवर्तन होती हैं, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन कि अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है तो उसको कैंसर होने का कॉज बढ़ जाता है, कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा अभी तक साइंस ने प्रूव नहीं किया है, है ना। तो जब भी हम कहीं पे बताएं ये चीज तो ये ध्यान में रखें। लेकिन कैसे स्ट्रेस रिलेटेड है कैंसर से, उन्होंने एक वर्ड दिया है साइंस ने, डिस्ट्रेस, है ना, कि स्ट्रेस 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 बहुत दिनों तक चल रहा है लेकिन जब इतना स्ट्रेस हो गया है कि हैंडल नहीं हो पा रहा है और उसका डेली लाइफस्टाइल पे भी फर्क पड़ रहा है तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस हैज बिकम इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ फैक्टर दैट कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहां पे स्ट्रेस का इफेक्ट आता है कि कैंसर हो गया लेकिन उसके बाद पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसका इमोशनल मतलब इमोशनली वो कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसे हैं उसके, तो उस पर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है और इस पर स्टडीज भी हुई हैं। सो लेकिन डायरेक्ट एविडेंस अभी वीक है। अच्छा, अभी दो तरह से स्ट्रेस को कैंसर के साथ लिंक किया जाता है कि होता क्या है कि स्ट्रेस अगर किसी को है बहुत ज्यादा तो वो किस तरफ जाएगा, ड्रग्स की तरफ जाएगा, अल्कोहल लेगा, स्मोकिंग करेगा, ओवर ईटिंग करेगा, उससे उसका रिस्क बढ़ जाएगा कैंसर होने का, है ना, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल सबसे ज्यादा कारण है कैंसर करने के। दूसरी चीज ये होती है कि सपोज एक भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ, थोड़े सालों के बाद दूसरे भाई को भी डिटेक्ट हो गया और वो एक ही घर में रहते थे, तो उनको देखकर, उनको ऑब्जर्व करके हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि दूसरा भाई जो था ना वो बहुत स्ट्रेस में था क्योंकि उसके भाई को ऐसे ऐसे कैंसर हुआ था, तो वो स्ट्रेस के कारण दूसरे भाई को भी कैंसर हो गया। ज्यादातर हम इस तरह के कंक्लूजन निकालते हैं, पर दूसरा कारण भी हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री थी कुछ, तो उसके भाई को भी ऑलरेडी रिस्क हाई ही था कैंसर होने का, बट कुछ चीजों के चलते कुछ फैक्टर्स बने होंगे कि जिसके चलते उनको भी कैंसर डिटेक्ट हो गया नियर सेम एज। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से किए गए हैं कि कॉर्टिसोल एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, जैसे कल डॉक्टर अदिति ने पॉजिटिव हार्मोन्स के बारे में बात किया, तो कुछ स्ट्रेस हार्मोन भी होते हैं जैसे कॉर्टिसोल है, नॉरएपिनेफ्रिन है, जो स्ट्रेस में रिलीज होते हैं। तो स्टडीज ने रिलेट किया है कि जब कैंसर हो गया, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कैंसर बहुत जल्दी स्टेज में डिटेक्ट हो गया, उसकी सर्जरी करके निकाल दिया एंड ट्रीटमेंट हो गया, है ना, उसके बाद पेशेंट सेफ है, लेकिन फैल जाता है कैंसर। एक बार वो ब्लड में स्ट्रीम में आ गया ना उसका एक भी सेल, तो वो बॉडी के सारे सेल्स में चला जाता है, सारे में नहीं जाता पर नियरेस्ट जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें चला जाता है। तो ये जो कैंसर फैल जाता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, और फिर वो वहां जाके अपना पूरा ब्लड वेसल्स और पूरा अपना संसार बेसिकली बसा लेता है, तो उसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। इसको रिलेट किया है कि स्ट्रेस की वजह से ये प्रोसेस जो है वो जल्दी आ जाता है ऐसा। फिर कुछ ब्रेस्ट कैंसर केसेस ने ये बताया कि जब वो कीमो ले रहे थे, तो अगर कीमो के साथ साथ उन्होंने बीटा ब्लॉकर्स लिए, बीटा ब्लॉकर्स एक ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं, तो जिन्होंने बीटा ब्लॉकर्स लिए थे उनमें ये पाया गया कि कैंसर जो था वो जल्दी ट्रीट हुआ और रेकरेंस नहीं हुआ उसका, मतलब दोबारा होने के चांसेस कम दिखाई दिए, है ना। तो मतलब स्ट्रेस को आपने कम कर दिया तो इसका मतलब आपने सर्वाइवल रेट बढ़ा दिया, तो ये बात है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब स्ट्रेस में इंसान है या प्रेशर में है तो वो हेल्पलेस फील करता है, होपलेस फील करता है, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट करवाना छोड़ देगा, है ना, प्रॉपर जो केयर लेनी होगी वो छोड़ देगा, उसके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, फिर उसका घर वालों का उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा सपोज, तो उसके कारण से स्ट्रेस है। इन सब चीजों के चलते वो ट्रीटमेंट टाइम पे लेगा नहीं या प्रॉपर थेरेपीज नहीं लेगा, फिर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनके कारण से फिर प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, तो ये कारण बनते हैं। और फिर कोप करना, मतलब कैसे उससे बाहर निकलना, तो ये देखा गया है कि जो लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं जैसे मेडिटेशन है या फिर और भी रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होते हैं, उनमें पाया गया कि डिप्रेशन का, एंजाइटी का लेवल कम था और उनका ट्रीटमेंट बेटर हुआ ऑन एन एवरेज। फिर योगा की बात आती है कि क्या योगा से कैंसर का कुछ रिलेशन है क्या, तो डिफरेंट पोजेस, डिफरेंट आसन हम करते हैं। योगा को एक्चुअली थर्ड मोस्ट पॉपुलर है ये एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन फॉर कैंसर, है ना, मतलब योगा को एज अ थर्ड, मतलब अगर मेन मेडिसिन नहीं लिया जाए या उसके साथ साथ कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी दी जाए तो उसमें योगा का तीसरा रोल है। तो ये देखा गया कि जैसे 3 महीने तक जिन कुछ लोगों ने योगा किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, है ना, और कैंसर पेशेंट्स ही थे, लेकिन जिन्होंने किया योगा उनके अंदर ऑक्सीजनेशन का लेवल जो था वो बढ़ा हुआ मिला, है ना, क्योंकि प्राणायाम से हम सबको पता है कि हम सांस का प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है जो कैंसर की प्रोटेक्शन में मदद करता है, है ना, या फिर जल्दी ही उसको बॉडी से निकालने में, ट्रीटमेंट में मदद करता है। तो इनका सार क्या हुआ कि हमको ये चीजें अपनानी चाहिए, है ना, गुड लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात नहीं किया है, लेकिन डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितना भी हम खा सकते हैं, और अवॉइड करें मतलब अनहेल्दी फूड। तो ये सब फैक्टर्स के चलते हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। फिर स्ट्रांग लिंक बताया गया है फिजिकल एक्टिविटी के साथ, कोलोरेक्टल कैंसर मतलब आंत का जो कैंसर है, फिर यूट्रस का कैंसर है और जो ब्रेस्ट कैंसर है, इन तीनों में देखा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी जितना ज्यादा किया उसका एक रिलेशन देखा गया कि आप रिस्क जो था कैंसर का कम हो गया ऑन एन एवरेज, है ना। और अगर कि कोई ओबेसिटी है, किसी को फैट है बहुत ज्यादा, तो फैटनेस भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बनता है। और एक रिस्क फैक्टर है जो हमने यहाँ पे बात नहीं की, वो है सनलाइट, कि सनलाइट में अगर हम बहुत ज्यादा नहीं जाते, वो जो आजकल लाइफस्टाइल हमारा सब, मतलब हमारा इतना नहीं है शायद, पर ज्यादातर लोगों का दुनिया में ऐसा होता जा रहा है, उस लाइफस्टाइल के चलते भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, तो अभी जैसे हमारा टॉपिक था हेरिडिटरी कैंसर, तो अभी हम आते हैं हेरिडिटरी कैंसर पे कि हमारी फैमिली हिस्ट्री कैसे रोल प्ले करती है। तो ये जो अभी तक हमने बात किया ये सारा 90% में फॉल कर रहा था कि मोस्ट कॉमनली कैंसर जो है वो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट कारणों से होता है, जिसमें से 5 से 10% जो है वो हेरिडिटरी कॉज होते हैं, कि मतलब अगर किसी की पहले फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में पहले किसी को कैंसर हुआ है, तो उसके कारण से उनका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे दो दिखाए गए हैं, एक है इनहेरिटेड और एक है फैमिलियल। इनहेरिटेड वो है कि उस फैमिलीज में आ रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है एक फैमिली में, और उसका कारण भी हमको पता है। 15-20% भी फैमिलियल की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन उसका कारण नहीं पता। तो देखने में आ रहा है कि अच्छा 3-4 लोगों को फैमिली में कैंसर है, लेकिन जब टेस्टिंग की तो कुछ पता नहीं चला, है ना, तो उसको फैमिलियल कैटेगरी में डाल दिया। अच्छा, तो जो हमने बात की थी कि कैंसर जो जेनेटिक डिसीज है, अगर पेट के सेल्स में कैंसर हुआ तो वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगा, लेकिन कई बार हमने इस तरह से देखा है कि एक जनरेशन में कैंसर किसी को भी नहीं हुआ था, लेकिन अगली जनरेशन में एक बहन को हो गया, फिर दूसरी बहन को हो गया, फिर उनके कजन को भी हो गया, है ना, इस तरह से। तो फिर उनका जब हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो वो बोलेंगे अरे हमारी फैमिली में तो पहले किसी को भी नहीं था, है ना, तो फिर वो बोलेंगे ये तो जेनेटिक नहीं हो सकता, ये तो बाई चांस ही हुआ होगा। फैमिली में मतलब पिछली जनरेशन में तो किसी को नहीं था, तो डीएनए तो वहीं से आया है, इसका मतलब नहीं है जेनेटिक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफी सारे जीन्स ऐसे हैं कैंसर वाले जो साइलेंट रहते हैं, वो एक जनरेशन में नहीं किए किसी रीजन से एक्सप्रेस, बहुत सारे रीजन बनते हैं उसके, अगेन उसमें लाइफस्टाइल, डाइट, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अगली जनरेशन में कर गए, वो उनको वो एनवायरमेंट मिला और वो ग्रो कर गए, है ना। तो हेरिडिटी को हम कुछ, ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी जो है वो हमेशा कैंसर से ही रिलेटेड है, तो हमारे कुछ जीन्स जो हमें आंखों का कलर प्रोवाइड करते हैं, स्किन का कलर प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये कहां से आ रहा है हमारा स्किन का कलर, आंखों का कलर, बालों का कलर, ये कहां से आ रहा है, जीन्स से ही आ रहा है, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। फिर हमारा ब्लड ग्रुप, अब हम बात करते हैं कि ओके मेरा ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ये क्या है। एक्चुअली अननोइंगली हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ए बी पॉजिटिव मतलब आपके अंदर ए जीन भी है और बी जीन भी है, तो आपका ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव। अगर बी पॉजिटिव है मतलब बी है और ओ है, तो बी ओ मिलके बी डोमिनेंट होता है तो बी एक्सप्रेस करता है, तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो यहां पर भी हमारे जीन्स इन्वॉल्व है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जीन्स बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमें काफी कुछ पता है, काफी कुछ नहीं भी पता है। अच्छा, हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स की अब हम बात करते हैं कि हमें कब सोचना है कि किसी को कैंसर जो है वो हेरिडिटी में आ सकता है। अगर आप देख रहे हो कि किसी को कैंसर हुआ है 50 की एज से पहले, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 60 के बाद होगा, है ना, 60, 65, 70 के बाद होगा, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि किसी को 50 से पहले कैंसर हो रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर आजकल वुमेन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो और भी बहुत सारे कैंसर होते हैं, लेकिन 50 से पहले किसी को 30 की एज में हो गया है, किसी को 17 की एज में, 15 की एज में, है ना, तो आप कोई भी कैंसर अगर है तो हेरिडिटी के बारे में सोचने की जरूरत है, चाहे कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, है ना, और अगर है तो वो एक एडेड फैक्टर बन जाता है। फिर अभी हम सोचते हैं कि दो फैमिली मेंबर्स, अगर दो फैमिली मेंबर्स को कैंसर हुआ है, कोई भी दो फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अगर वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, मतलब भाई बहन या तो मम्मी पापा, मतलब ये वाली एक जनरेशन का गैप है, तो अगर दो कैंसर आपको दिख रहे हैं कि फैमिली में, तो हम हेरिडिटी के बारे में सोचें। एक ही इंसान के अंदर दो अलग तरह के कैंसर हो जाते हैं, तो तब भी हमको जेनेटिक्स या हेरिडिटी के बारे में सोचना चाहिए, है ना। सोचने से क्या करेंगे, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है और ढूंढना है कि कोई भी जेनेटिसिस्ट या तो जेनेटिक काउंसलर हॉस्पिटल में अवेलेबल है क्या, अगर है तो वो आपको रेफर करें और आप उनसे बात करें। अभी जस्ट ये आपकी अवेयरनेस के लिए है कि जब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ किसी को, है ना, ये क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इतना कॉमन हो चुका है, और अगर हम देखा जाए तो हमारी संस्था जो है वो फीमेल डोमिनेटिंग संस्था है ना, मतलब फीमेल्स का नंबर ज्यादा है, तो हमें इन चीजों के बारे में एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। अगर किसी की फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, किसी को ओवरी का कैंसर हुआ, किसी को यूट्रस का कैंसर हुआ, और किसी को सपोज किसी मेल को कोई और कैंसर हुआ, राइट, तो भी हमको सोचना है। अब जरूरी नहीं है कि ये तीनों चारों एक ही फैमिली में मिलेंगे, ऐसा हो सकता है कि किसी को ओवरी का कैंसर हुआ और किसी को पेट का कैंसर हुआ, तो देखना, तो तब भी हमारा ये ड्यूटी बनता है, चाहे वो किसी भी एज में हुआ हो, फिर है ना, स्पेशली बिटवीन बिफोर 60 60 की इससे पहले हुआ हो तो स्पेशली हमें कंसिडर करना चाहिए। तो क्या क्यों ऐसा होता है कि एक मतलब इतने सारे कैंसर एक ही फैमिली में हो रहे हैं और हम हेरिडिटी को कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि अगर एक जीन में वो डैमेज प्रोटीन बन गया ना, प्रोटीन खराब हो गया सपोज, तो वो अलग अलग ऑर्गन में कैंसर कॉज करने का पोटेंशियल रखता है। इसके कारण से इसको बोलते हैं कि HBOC की कैटेगरी में इसको डालते हैं। फिर है पेनक्रियाटिक कैंसर। अगर ब्रेस्ट कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर है तो एक पर्टिकुलर टाइप की जीन है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है और कोलोन मतलब आंत का कैंसर है या पेनक्रियाज का कैंसर है तो ये सब क्लस्टर मिलके एक दूसरा जीन होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। फिर ब्रेस्ट कैंसर है और किसी को फैमिली में ब्लड का कैंसर हुआ है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, किसी को बोन का कैंसर हुआ है, तो ये एक क्लस्टर बना के इसका कारण जो है वो एक ही जीन है ना। फिर और भी तरह का है कि गैस्ट्रिक कैंसर होता है, फिर यूट्रस का कैंसर और थायराइड का, गले का कैंसर भी बहुत कॉमन है। गले का कैंसर ज्यादातर जो होता है वो तंबाकू खाने से होता है, तंबाकू या अल्कोहल से। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया कभी भी, फिर भी उसको गले का कैंसर हो रहा है तो जेनेटिक इवैल्यूएशन कराना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये भी हमने थोड़ा देखा है कि कॉमनली मिलता है। और क्या होता है ना, इनका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। अगर आपको पहले ही पता चल गया ना कि आपको रिस्क हाई है थायराइड कैंसर होने का, सपोज आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, किसी की भी फैमिली में कोई हिस्ट्री है और उसको पता चल गया कि अच्छा उसको रिस्क हाई है, तो वो क्या करेगा उसके बाद, है ना? वो क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर हमारे ऑर्गन्स होते हैं कि अगर उनको बॉडी से निकाल भी दिया जाए तो बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल पे फर्क नहीं आता है, है ना? कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं बट कैंसर के रिस्क से तो बच जाते हैं ना। तो वो सारे मेजर्स अवेलेबल हैं, उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, फील्ड इतना आगे आजकल जा चुका है तो वो हमको फैसिलिटीज लेनी चाहिए। फिर कोलोन कैंसर का भी ऐसे ही डिवीजन है कि आंत का कैंसर हुआ और उसके साथ साथ ओवरी का कैंसर किसी और को हुआ फैमिली में, इस तरह से करके अलग अलग क्लस्टर बनते हैं, तो आपको पहचानना है। अब ये एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करता है। जो कैंसर है, अगर एक जनरेशन में किसी को हेरिडिटी टाइप का कैंसर हुआ है और हमने उसका जीन भी आइडेंटिफाई कर लिया उनको टेस्ट करके, तो अगली जनरेशन में जाने का और भाई बहनों को होने का 50% चांस बनता है, है ना? अभी 50% नंबर तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन पेशेंट्स को हम यही बताते हैं कि 50% जब वो टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो वो डर जाते हैं क्योंकि 50% चांस है कि पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? लेकिन 50% ये भी चांस है कि वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना? तो लेकिन जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे हमको पता नहीं चलेगा कि जीन्स में एक्चुअली क्या चल रहा है ऐसा। तो एक जस्ट केस स्टडी यहां पर दिया है। इसमें एक सुनीता करके एक पेशेंट है, वो 60 ईयर ओल्ड थी, है ना? 60 ईयर्स की थी, शी वॉज फ्रॉम पुणे और वो क्लिनिक में आई। उसको ओवेरियन कैंसर के कुछ सिम्टम्स थे जो पता चला कि उसका जब टेस्ट वगैरह किया तो कंफर्म हो गया कि हाँ ओवरी का ही कैंसर है। तो ओवरी कैंसर की ये गाइडलाइन है कि किसी भी तरह का ओवरी का कैंसर कितनी भी एज में हुआ हो, फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो, उनको जेनेटिक इवैल्यूएशन कराना चाहिए। तो उनको जेनेटिक काउंसलर के पास भेजा और जब उनकी पूरी हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उनकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की। तो फैमिली हिस्ट्री इस तरह से एक चार्ट बना देते हैं फैमिली का, ठीक है? तो इसमें क्या है कि ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से सेपरेट करती है। तो मतलब यहां पर जो स्क्वायर है वो मेल्स हैं और जो सर्कल है वो फीमेल्स हैं। ये एक जनरेशन हुई, फिर ये दूसरी जनरेशन और ये तीसरी, ये जो लाल और ग्रे कलर्स दिख रहे हैं ये एक जनरेशन है पूरी। तो अब इसमें क्या है, ये हमारी पेशेंट है 60 ईयर्स की, इनकी एक बहन है जिनको भी ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ 55 की एज में। फिर इनकी एक और बहन की डेथ हुई, जब इनकी फैमिली हिस्ट्री ली ये सब बात तब पता चली। जब डॉक्टर्स पूछते हैं ना पेशेंट से कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है क्या, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं किसी को भी नहीं है, है ना? फिर जब उनकी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है बैठ के आधा घंटा, तो तब ये सारी बातें हमको पता चलती हैं। तो 45 की एज में एक बहन की ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुई थी। फिर एक और कजन की, मतलब अगर ये जो हमारी पेशेंट है तो इनके मामा की बेटी की भी ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुई हुई थी, ठीक है? तो इनको एक जेनेटिक टेस्ट सजेस्ट किया गया, इन्होंने वो कराया और उस टेस्ट का रिजल्ट ये था। उसमें पता चला कि BRCA1 एक जीन है जो इनके अंदर पॉजिटिव आया है और ये जीन ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, स्किन का कैंसर, ये सब कुछ कर सकता है एक ही फैमिली में, है ना? तो इनको ब्रेका वन पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो ओवरी का कैंसर था उसका कारण क्या था, ये पर्टिकुलर जीन में इनके इन्होंने ऊपर से अपनी जनरेशन से वो इनहेरिट किया था वो डीएनए में चेंज। हाँ, तो अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हमने इनको ऑप्शन सजेस्ट किए कि आप अपनी ओवरीज रिमूव कर दो और फिर आपको फ्यूचर में क्योंकि दूसरे कैंसर होने के भी चांस हैं तो आप वो ऑर्गन्स भी रिमूव करवा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज क्या हुआ कि दूसरे फैमिली मेंबर्स को अभी तक कैंसर जिनको नहीं हुआ है उनका हम रिस्क एसेसमेंट कर सकते हैं कि उनको भी रफली 50% चांस बनते हैं होने का, तो उनको भी टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर वो पहले से पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे पता चला एक्चुअली इनके फैमिली मेंबर्स को भी टेस्ट किया। तो ये जो दीदी दो मिनट होगा बस, तो ये जो पीले वाले हैं ना, येलो वाले, ये ब्रेका पॉजिटिव आए, तो मतलब ये 48 की विमेन है और इनको पहले से ही पता चल गया कि इनके अंदर ब्रेका वन में चेंज है। तो ये क्या करेंगे, अभी इनका 48 एज हो चुका है ऑलरेडी, तो कुछ ऑर्गन्स रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन ये हम एज अ काउंसलर इनको ये नहीं बोल सकते कि आपको कराना ही है, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है, फिर उनकी मर्जी है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर नहीं रिमूव करा रहे तो उसके भी गाइडलाइंस होते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी बहनों में से आप देख रहे हैं कि जो हरे वाले हैं, दो हरी बहन मतलब हरे कलर से यहाँ पे किया गया है, वो दो बहनों को नेगेटिव आया तो वो फ्री हो गए, वो उस टेंशन से फ्री हो गए कि अच्छा हमको कैंसर होने का हेरिडिटरी रिस्क नहीं इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क फ्री होने का भी एक जरिया है जेनेटिक टेस्टिंग, ये जस्ट आपको एक अवेयर करना था। तो अभी क्या है कि अब इनको ब्रेका वन पॉजिटिव आया, तो जैसे मैंने बताया कि ये वाले सारे गाइडलाइंस इनको दिए जाते हैं, एनसीसीएन करके एक बॉडी है, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, ये प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं एक्चुअली डॉक्टर्स को भी किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, कब कौन सी ड्रग यूज करनी है, एनसीसीएन उसकी गाइडलाइंस देता है। तो जेनेटिक्स के लिए भी इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है, तो काफी सारी ये चीजें होती हैं कि हम उनको सर्जरीज बता सकते हैं। अभी किसी को कभी कैंसर हुआ ही नहीं है, शी इज 18 ओनली, है ना, एक वुमेन है वो 18 है, या कोई एक बच्चा है वो अभी जस्ट 12 साल का है, तो 18 साल से पहले उसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती है क्योंकि वो एथिकल नहीं है, क्योंकि उसको 18 से पहले इस तरह ब्रेका वन से रिलेटेड कैंसर होने के चांस नहीं बनते हैं, तो हम उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे जब तक वो 18 के ना हो जाए, है ना। तो ऐसा करके कुछ गाइडलाइंस रहती हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर। तो बेसिकली ये गाइडलाइन देके हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीजें कर रहे हैं, एक तो कुछ लोगों में हम कैंसर होने से रोक रहे हैं, है ना, अगर उनकी एज हो चुकी है तो वो कुछ ऑर्गन्स रिमूव करा सकते हैं। एक है अर्ली डायग्नोसिस, है ना, कुछ भी नहीं कराया, कोई मेजर नहीं लिया, जस्ट साल भर हर साल स्क्रीनिंग करते रहे, है ना, कि हर साल आप स्क्रीनिंग कराते रहो कैंसर का, तो आप जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो कैंसर को, क्योंकि कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो थोड़ा एडवांस स्टेज में जाकर डिटेक्ट होता है जब हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक्स हमें ये मदद कर रही है कि हम थोड़ा जल्दी डिटेक्ट कर लें, जिससे सिर्फ सर्जरी करके उसको रिमूव कर दिया जाए और थोड़ी बहुत कीमो लेनी है तो ले सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारा रिस्क बहुत 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 कम हो जाता है, है ना। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन, यहाँ पे जेनेटिक्स मदद कर रहा है। फिर ये बहुत डिटेल्स है, सो मैसेज ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अभी हम इतना सारा इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद बाबा के फिर से वो महावाक्य रिपीट करते हैं कि इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बाद कुछ लोगों में के मन में क्वेश्चन आता है कि हमको नहीं जानना है कि हमको कितना रिस्क है फ्यूचर में होने का, जब होगा जो हो जाएगा, ड्रामा में जो होगा हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए, और हमारा जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, राइट, तो हम इसी जीवन में बहुत सारी सेवा भी करना चाहते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष भी करना चाहते हैं, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें ऑप्शंस भी पता हो, है ना, और ये इजीली अवेलेबल है। अभी जस्ट एक छोटी सी बात है कि 3 साल पहले तक ये सर्विसेज इंडिया में इतनी अवेलेबल नहीं थी और बहुत ही कॉस्टली थी जहां जहां भी अवेलेबल थी। अभी इसकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती जा रही है और ऑप्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जस्ट आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, आपको जस्ट एक अवेयर करना था। तो बाबा के महावाक्य जो थे क्या है, वाह वाह, हमको हाय हाय नहीं करना है, हमको वाह वाह करना है, और जहां हम एक्शंस ले सकते हैं वो एक्शन के लिए हमको अवेयर रहना है, और हम उसको मतलब टेंशन नहीं लेनी है उसकी, लेकिन उसको जो भी हमें समय पर हमको करना है हम वो करें, ऐसा बस ये मैसेज है। ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है अगर पर्सनल कुछ फैमिली का है तो वो बाद में पूछ सकते हैं। ओम शांति।